नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही विशेष पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत
जी
इस पर बात करने वाले हैं
जी।
और इसमें भी एक खास अध्याय है, प्रवास का दूसरा चरण एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण।
हम इसी पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे
जी। हाँ, ये अध्याय पूज्य गुरुदेव के जीवन का कह सकते हैं कि एक बहुत ही निर्णायक मोड़ दिखाता है।
अच्छा।
हाँ, उनकी जो दूसरी हिमालय यात्रा हुई और फिर आगे उन्हें क्या करना है, उनके मिशन की पूरी रूपरेखा, वो सब इसी दौरान तय हुआ।
हाँ, मैंने पढ़ा कि ये दूसरी यात्रा पहली वाली के करीब 10 साल बाद हुई।
जी, पूरे 10 साल।
तो ये 10 साल का अंतराल क्यों? मतलब क्या गुरुदेव इस दौरान सोच रहे थे हिमालय जाने का, या ये बुलावा एकदम से आया?
पुस्तक तो यही बताती है कि ये बुलावा अप्रत्याशित ही था। पूज्य गुरुदेव अपने कामों में लगे हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था और जो दूसरे कार्य सौंपे गए थे उनमें व्यस्त थे।
तभी एकदम से हिमालय से फिर से मार्गदर्शन का संकेत मिला। अब गुरु आज्ञा थी तो वो तो शिरोधारिया होती है, वे फौरन निकल पड़े।
हाँ, और यात्रा का वर्णन भी बड़ा रोचक है। जैसे उत्तरकाशी तक तो सड़क मार्ग था, पर आगे,
हाँ आगे गंगोत्री से गोमुख का रास्ता, तो वो तो हर साल बदल जाता है बर्फबारी वगैरह से।
सही बात है।
तो वो रास्ता पार करना, फिर गोमुख से भी आगे नंदन वन तक पहुंचना, ये सब आसान नहीं था।
तो फिर वो नंदन वन तक पहुंचे कैसे?
वहां पर उनकी सहायता की गुरुदेव के ही एक सूक्ष्म शरीरधारी संदेशवाहक ने, मतलब वो भौतिक रूप में नहीं थे, एक सहायक।
अच्छा, अदृश्य सहायक।
जी, उनकी मदद से नंदन वन पहुंचे और वहां पहुंचकर अपने गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर से उनकी बड़ी ही भावपूर्ण भेंट हुई। और इसके बाद ही गुरुदेव ने उन्हें संकेत दिया कि अब तुम्हें ऋषि सत्ता से मार्गदर्शन लेना है।
ऋषि सत्ता, यहीं से बात और गहरी हो जाती है। मतलब वो सतयुग के ऋषियों से मिले, ये कैसे हुआ? और वो ऋषि कैसे थे, क्या स्थिति थी उनकी?
हाँ, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत अनुभव था। पुस्तक में वर्णन है कि पहले तो वो ऋषि केवल प्रकाशपुंज की तरह दिखे।
प्रकाशपुंज
जी। फिर धीरे धीरे उनके वो सतयुगी यानी अत्यंत तेजस्वी और दिव्य शरीर भी दिखने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी, एक गहरी पीड़ा थी।
पीड़ा? इतने समर्थ ऋषि और उन्हें पीड़ा किस बात की?
उनकी पीड़ा थी अपनी ज्ञान परंपरा को लेकर कि वो लुप्त होती जा रही है।
ओहो।
उन्होंने बताया कि कैसे उनकी शुरू की हुई गतिविधियां सब ढीली पड़ गईं। उनका जो कार्यक्षेत्र था गंगोत्री से हरिद्वार तक का पूरा क्षेत्र, वो बोले कि खंडहर जैसा हो गया है। और सबसे बड़ी चिंता ये कि कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा जो इस ज्ञान को, इस परंपरा को आगे बढ़ा सके। तो ये केवल उनकी अपनी पीड़ा नहीं थी बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक धारा के रुक जाने का दुख था।
ये सुनकर तो हाँ, पूज्य गुरुदेव का मन तो पिघल गया होगा, स्वाभाविक है। फिर उन्होंने क्या सोचा, क्या किया?
हाँ, वो ऋषियों की ये हालत देखकर, उनकी व्यथा सुनकर बहुत द्रवित हुए और उन्होंने मन में सोचा कि इसका कुछ समाधान करना चाहिए। फिर अपने गुरुदेव के प्रोत्साहन पर उन्होंने हिम्मत करके अगले दिन ऋषियों के सामने एक प्रस्ताव रखा।
क्या प्रस्ताव?
उन्होंने कहा कि अगर आप ऋषिगण आज्ञा दें तो आपके इस छूटे हुए काम का बीजारोपण करने का प्रयास मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं इसे फिर से शुरू करने की कोशिश कर सकता हूँ।
और ऋषियों ने क्या कहा, उन्हें ये प्रस्ताव कैसा लगा?
अरे, उनमें तो जैसे एक उम्मीद की लहर दौड़ गई।
हाँ?
वे बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी और उनके गुरुदेव ने भी पूज्य गुरुदेव की क्षमता पर विश्वास जताया कि हाँ, ये कर सकते हैं।
अच्छा।
और बस वहीं पर फिर भविष्य के उस विराट काम की पूरी योजना बनी।
क्या योजना थी वो, मतलब क्या क्या काम करने का निश्चय हुआ?
मुख्य रूप से ये तय हुआ कि जो 24 लक्ष गायत्री महापुरशरण पूज्य गुरुदेव कर रहे थे, उनकी पूर्णाहुति पर मथुरा में एक बहुत बड़ा सहस्र कुंडीय महायज्ञ किया जाएगा।
मथुरा में?
जी, मथुरा को ही केंद्र बनाने का निर्देश मिला, क्योंकि वो देश के मध्य में पड़ता है और वहां आना जाना भी सबके लिए सुलभ रहता है।
ठीक है।
और लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था धर्म तंत्र के माध्यम से, मतलब आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के आधार पर, तीन क्रांतियां लाना, नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति।
ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य था। और इन विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या सोचा गया? और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े काम के लिए साधन संसाधन कहाँ से आएंगे?
हाँ, ये चिंता तो पूज्य गुरुदेव को भी हुई। विचारों को फैलाने के लिए तो तय हुआ कि मथुरा से ही मासिक पत्रिका अखंड ज्योति, जो पहले बंद हो गई थी, उसे फिर से शुरू किया जाए और दूसरी पुस्तकें भी प्रकाशित की जाएं।
और संसाधन, पैसे, लोग?
उस चिंता पर गुरुदेव ने बस एक सूत्र वाक्य दिया, बो और काटो।
बो और काटो, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि तुम बस काम शुरू करो, जो तुम्हारे पास है, चाहे कितना भी काम हो, उसे बोना शुरू करो। बीज डालो, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सहायता करेगा और फसल 100 गुनी होकर मिलेगी। कर्म करो, फल की चिंता व्यवस्था पर छोड़ दो।
वाह, अद्भुत संदेश। तो इसी विश्वास और योजना के साथ वे मथुरा आ गए।
जी,
लेकिन मथुरा में तो कोई जान पहचान नहीं थी, शुरुआत कहाँ से की, रहने की जगह?
वही, सबसे पहले पत्रिका शुरू करनी थी तो उसके लिए कोई मकान चाहिए था। ढूंढते ढूंढते घिया मंडी में एक बहुत बड़ा पुराना 15 कमरों वाला मकान मिला, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में।
अच्छा।
और लोग उसे भुताहा मानते थे, इसलिए उसका किराया भी बहुत कम था।
आसपास के लोगों ने मना भी किया कि यहाँ मत रहिए, गड़बड़ है।
लेकिन पूज्य गुरुदेव तो शायद रुके नहीं होंगे।
बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, हम यहीं रहेंगे।
और शुरुआत में कुछ हुआ भी, रात में छत पर धमा चौकड़ी, अजीब अजीब आवाजें।
सच में? फिर
उन अदृश्य सत्ताओं से कह सकते हैं कि एक तरह का संवाद किया और एक समझौता हो गया।
समझौता? कैसा समझौता?
कि भाई, ऊपर के 7 कमरे तुम्हारे, नीचे के 8 हमारे, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना रहो। और आश्चर्य की बात है कि उसके बाद वो उपद्रव बंद हो गए।
अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और फिर उसी भुतहा मकान से अखंड ज्योति का काम फिर शुरू हुआ?
जी हाँ, बिल्कुल, वहीं से फिर लेखन का काम, पत्र व्यवहार और मिशन का जो जमीनी काम था वो सब शुरू हुआ। और मन में हमेशा गुरुदेव का वो संदेश गूंजता रहता था, बो और काटो।
तो ये जो दूसरी हिमालय यात्रा थी, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये तो पूज्य गुरुदेव के पूरे जीवन मिशन का एक स्पष्ट नक्शा बनाने और उस विलुप्त होती ऋषि परंपरा को फिर से जगाने का संकल्प लेने का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था।
और मथुरा में शुरुआत भी देखिए कितनी विपरीत परिस्थितियों में हुई, पर वो बो और काटो के सिद्धांत पर टिके रहे और काम शुरू कर दिया।
हाँ, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और अपनी गुरु और अपने आदर्शों में जो अटूट श्रद्धा होती है, वो एक लगभग खत्म हो चुकी परंपरा को भी फिर से जीवित करने का आधार बन सकती है।
बिल्कुल, और आज के समय में भी जब हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, हम ये कैसे करें, वो कैसे करें, तब ये बो और काटो का सिद्धांत कितना काम का है
ना?
सही का।
कि आपके पास जो भी है, चाहे थोड़ी सी क्षमता हो, थोड़ा समय हो, थोड़े पैसे हो, बस उसे पूरी ईमानदारी से, अच्छी नीयत से लगाना शुरू कर दीजिए, शायद आगे का रास्ता वहीं से खुले।
बहुत गहरा विचार है ये, और इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की चर्चाओं को यहीं विराम देते हैं। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद।